हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। 162। उस दिन के बाद करण और शिविका में से किसी ने भी इस बारे में बात नहीं की। बात को टालते हुए उन दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ सुलझ गया है। इन दिनों ऑफिस में काम थोड़ा ज्यादा था, जिसकी वजह से उन दोनों को पर्सनल मैटर पर बात करने या साथ में समय बिताने का समय ही नहीं मिला। रोज की तरह आज भी करण और शिविका एक साथ ऑफिस में बैठे हुए अगले प्रोजेक्ट पर चर्चा कर रहे थे। तभी शिविका का मोबाइल फोन रिंग हुआ। उसने पहले तो इग्नोर कर दिया, लेकिन एक दो बार फिर से उसका मोबाइल फोन रिंग हुआ। तब करण ने कहा, कोई बात नहीं, रिसीव कर लो, कॉल जरूर कोई इम्पोर्टेंट कॉल होगा, इसीलिए बार बार कॉल आ रही है। करण की बात सुनकर शिविका ने धीरे से अपना सिर हिलाया। उसने हाथ बढ़ाकर डेस्क से मोबाइल फोन उठाया, कॉल रिसीव की और मोबाइल फोन अपने कान से लगाते हुए बोली, हेलो। शिविका ने सिर्फ इतना ही कहा और उसके बाद वो एक मिनट तक दूसरी तरफ से जो कोई भी बोल रहा था उसे सुनती रही। लेकिन अभी दो मिनट भी नहीं हुए थे कि वो एकदम अपनी चेयर से उठकर खड़ी हुई और बोली, मैं बस अभी आ रही हूँ, जब तक आप वहीं पर ही रुकिएगा। और ऋषभ कहाँ है? वो नालायक है कि नहीं वहाँ पर? शिविका की ये बात सुनकर लैपटॉप के कीबोर्ड पर काम करते हुए करण के हाथ रुक गए। उसने हैरानी से नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ भी पूछने के लिए वो कॉल डिस्कनेक्ट होने का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही शिविका ने कॉल डिस्कनेक्ट की, वो एकदम से बोली, करण, ये सब अभी के लिए पोस्टपोन करो, जो कुछ भी इम्पोर्टेंट काम है सब फ़िलहाल कल के लिए शेड्यूल कर दो, क्योंकि मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है। इतना बोलते हुए वो काफ़ी परेशान लग रही थी। हॉस्पिटल? करण ने भी एकदम हैरानी से कहा। इतना बोलते हुए वो भी अपना लैपटॉप बंद करते हुए उठकर खड़ा हो गया। शिविका ने भी जल्दी जल्दी हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, वो पापा को पैरालिसिस अटैक आया है फिर से और वो हॉस्पिटल में है। दिनेश अंकल हैं सिर्फ उनके साथ और बाकी वहाँ पर कोई भी नहीं है, मुझे वहाँ जाना होगा। इतना बोलते हुए वो वहाँ से केबिन के दरवाजे की तरफ आगे बढ़ी, लेकिन उसने करण को अपने साथ आने के लिए नहीं कहा। शिविका के पापा की तबीयत और उनके हॉस्पिटल में एडमिट होने की बात सुनते ही करण भी उनके लिए काफ़ी परेशान हो गया। उसने इन सब चीज़ों के बारे में नहीं सोचा कि शिविका ने उसे साथ में चलने को कहा है या नहीं। वो खुद ही तुरंत उसके पीछे आते हुए बोला, अकेले जाओगी क्या? वेट, मैं भी साथ चलता हूँ। शिविका इस वक्त उसे मना करने या किसी और बहस में नहीं थी, इसलिए उसने बस हल्के से हाँ में अपना सिर हिलाया और तेज कदमों से वहां से निकलकर भागी। ऑफिस में सारे लोगों ने उसे इस तरह से जाते हुए देखा और करण भी उसी की स्पीड को मैच करता हुआ वहां से निकल गया। ऋषभ जब घर आया तो घर की नौकरानी से उसे पता चला कि उसके पापा हॉस्पिटल में हैं। ये बात सुनते ही वो तुरंत ही वहां से निकलने वाला था, लेकिन आज दो दिनों के बाद समर भी वहां पर आया हुआ था क्योंकि ये उसके ट्यूशन का समय हो गया था। लेकिन वो जैसे ही वहां पर आया तो उसे बहुत ही हड़बड़ाहट में दरवाजे से बाहर निकलता हुआ ऋषभ नजर आया। समर ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, कहां जा रहे हो इस वक्त? मैंने तुम्हें बताया था ना कॉल पर कि आज मैं आने वाला हूं। समर की बात सुनकर ऋषभ ने उसकी तरफ देखा और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, सॉरी हाँ, मुझे याद है, लेकिन मैं अभी हॉस्पिटल जा रहा हूँ। वो पापा को पैरालिसिस अटैक आया है और वो वहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट है। ऋषभ ने बस इतना ही कहा तो समर ने कहा, व्हाट, अंकल क्या हो गया? उन्हें जब मैंने लास्ट टाइम देखा था तब तो ठीक थे ना, अचानक से ये पैरालिसिस अटैक कैसे? समर की इस बात पर ऋषभ ने कहा, मुझे भी नहीं पता, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था दूसरे डॉक्टर से और इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता। सच में मैं बहुत बेकार नालायक बेटा हूँ, सच कहते हैं मैं डैड में किसी भी लायक नहीं हूँ। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता कि कब उनकी हेल्थ कंडीशन इतनी ज़्यादा बिगड़ गई। ऋषभ ने बहुत ही ज़्यादा गिल्ट खुद पर लेते हुए कहा तो समर उसे समझाते हुए बोला, रिलैक्स, तुम्हारी गलती नहीं है इसमें, उनकी तबीयत पहले भी ठीक नहीं रहती, कुछ भी हो सकता है, चलो पहले चलकर देखते हैं, इस तरह खुद को ब्लेम करने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। समर ने काफ़ी समझदारी दिखाते हुए कहा, जबकि ऋषभ तो खुद से ही काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया था। ये सब कुछ सोचकर समर ने उसे समझाया और फिर वो दोनों एक साथ ही वहां से हॉस्पिटल के लिए निकल गए। दूसरी तरफ मीरा अपने शोरूम में काम कर रही थी कि तभी उसका मोबाइल फोन रिंग हुआ। उस पर एक अननोन नंबर से उसे बार बार कॉल आ रही थी। उसे वर्किंग आवर्स में पर्सनल फोन कॉल या मैसेज अटेंड करना अलाउड नहीं है, इसलिए वो बार बार उस कॉल को डिस्कनेक्ट कर रही थी। क्योंकि उसे ये भी नहीं पता था कि ये किसकी कॉल है, उसे लगा कि ऐसे ही किसी की कॉल होगी, इसलिए उसने इस पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस अपने काम में लग गई। लेकिन थोड़ी देर के बाद एक बाइक शोरूम के गेट पर आकर रुकी और एकदम झटके से वहां का अंदर की तरफ पुश करते हुए वहां का दरवाजा खुल गया। दरवाजे से अंदर चलते हुए एक लंबा चौड़ा हैंडसम सा आदमी आया, जिसने पुलिस के ड्रेस वाले कलर की खाकी पैंट पहनी हुई थी, लेकिन उसके ऊपर शर्ट उसने नॉर्मल व्हाइट पहनी थी और ऊपर से जैकेट ब्लैक कलर की डाली हुई थी। उसके इस तरह से अंदर आने पर वो लोग सब उसकी तरफ देखने लगे। स्टोर का मैनेजर जल्दी से वहां पर आते हुए बोला, सर, सर आप यहाँ, कोई प्रॉब्लम है क्या?
आप यहाँ पर कुछ खरीदने आए हैं क्या? अपने सवाल का जवाब जानने के लिए मैनेजर ने भी एक के बाद एक इतने सारे सवाल पूछे। जय ने बस एक नज़र को घूर कर उसकी तरफ देखा और आगे कुछ भी नहीं बोला, तो मैनेजर अपने आप ही चुप हो गया। जय ने उस पूरे शोरूम पर एक नज़र डाली और एक जगह पर जाकर उसकी नज़रें रुक गईं। जय की नज़रें एक जगह पर साइड में ठहर गईं और वो उस तरफ ही बढ़ गया। एकदम से वो उस काउंटर के पास वहां पर जाकर खड़ा हो गया जहां पर मीरा भी वहां पर खड़ी थी। वो चुपचाप अपने काम में लगी हुई थी, लेकिन जैसे जो उसने सामने जय को देखा वो एकदम से चौंकते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कब आए तुम? कुछ खरीदना है तुम्हें? पिछले 2-3 मीटिंग में ही वो जय को पहचान गई थी और फिलहाल मीरा को उसे यहाँ पर देखने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसने हैरानी से एक के बाद एक सवाल किए। उसके सवालों को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए जय बोला, कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही हो? मीरा ने बहुत ही मासूमियत से उसकी तरफ देखते हुए कहा, व्हाट कॉल? बट तुमने कब मुझे कॉल की? मीरा की ये बात सुनकर जय ने काफी गुस्से से घूरते हुए उसकी तरफ देखा। वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था और मीरा की ऐसी बातें और ऐसी बेवकूफी भरे सवाल उसकी फ्रस्ट्रेशन को और भी बढ़ा रहे थे, लेकिन ये बात मीरा को छोड़कर वहां पर मौजूद सारे लोगों को समझ आ रही थी। जय को इस तरह मीरा से बात करते देखा, मैनेजर जल्दी से भागते हुए मीरा के पास आया और उसके साइड में खड़े होते हुए धीमी आवाज में उसके कान में फुसफुसाकर बोला, क्या बात है मीरा, क्या किया है तुमने जो तुम्हारी वजह से आज पुलिस यहाँ पर इस शोरूम के अंदर आ गई? और ये पुलिस वाला तो काफी नाराज भी लग रहा है। मैनेजर ने समझदारी दिखाते हुए धीमी आवाज में उसे ये सब कुछ पूछा, जो कि सामने काउंटर की दूसरी तरफ खड़े हुए जय को सुनाई नहीं दिया। लेकिन मीरा ने अपनी बेवकूफी में नॉर्मल आवाज में ही मैनेजर की तरफ देखकर कहा, नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, मुझे क्या पता क्यों नाराज है ये इंस्पेक्टर।
मीरा की ये बात सुनकर जय ने अपने हाथों की मुठ्ठियां बनते हुए खुद को कंट्रोल किया। नाराज नहीं हूं मैं, बेवकूफ लड़की, गुस्से में हूं, और वो भी तुम्हारी वजह से। इतनी देर से मुझे परेशान करके रखा है, कब से तुम्हें कॉल कर रहा था, एक बार कॉल रिसीव कर लेती तो क्या चल जाता तुम्हारा। उसकी इस बात पर मीरा को एकदम से याद आया, अच्छा तो वो अननोन नंबर तुम्हारा है क्या? अरे हाँ, मैं तो भूल गई थी, तुमने मेरा फोन नंबर, एड्रेस, सारी डिटेल्स ले ली थी, लेकिन फोन क्यों कर रहे थे? वो मैटर सॉल्व हो गया है ना? उसकी इस बात पर जय थोड़ा उसे वार्निंग देते हुए बोला, हाँ सॉल्व हो गया है, लेकिन अगर तुम इस तरह से मेरे कॉल, मेरा मतलब है पुलिस के फोन कॉल को इग्नोर करोगी तो फिर सारा शक फिर से तुम पर आ जाएगा कि तुम इन सब चीजों से बचने के लिए ही ये सब कर रही हो, मैनेजर ने उन दोनों के बीच में बोला। लेकिन सर एक मिनट, इसने क्या किया है? मीरा अपनी सफाई पेश करती हुई बोली, सर मैंने कुछ भी नहीं किया है, आप इस तरह से क्यों पूछ रहे हैं? और तुम ऐसे चुपचाप क्या खड़े हो? बताओ इन्हें कि वो सब कुछ सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। जय ने एकदम सपाट चेहरे के साथ कहा, नहीं, अभी ये बात पूरी तरह से क्लियर नहीं हुई है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी या फिर तुम्हें जानबूझकर वहां पर भेजा गया, और जब सब कुछ क्लियर होगा ना तो तुम्हारे साथ साथ इस शोरूम पर भी खतरा होगा। शोरूम पर खतरे की बात सुनकर मैनेजर ने एकदम चौंकते हुए पूछा, क्या मतलब सर, हमारे शोरूम पर भी खतरा? क्या कहने का मतलब है, हम लोगों ने तो ऐसा कुछ भी गलत काम नहीं किया। फिर आप? जय ने मैनेजर को डांटते हुए कहा, चुप रहो तुम लोग, अभी इस बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और तुम? इतना बोलते हुए उसने अपनी नज़रें मीरा की तरफ घुमाई, तुम मेरे साथ चलो पुलिस स्टेशन, अभी तुम्हारे सिग्नेचर होने हैं एक जगह पर, और भी थोड़ी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट कर देना, लेकिन अगली बार से मेरा कॉल की रिसीव करना और नंबर सेव कर लो। मीरा ने उसे मना करते हुए कहा, मैं अभी नहीं आ सकती, अभी मेरे वर्किंग आवर्स चल रहे हैं और उसमें मुझे फ़ोन कॉल रिसीव करना भी अलाउड नहीं है, बस इसीलिए मैंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। जय को उम्मीद नहीं थी कि उसके इतना कुछ बोलने और उसकी वार्निंग के बाद भी वो इस तरह से सीधे ही मना कर देगी, इसलिए वो गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, सीधी तरह से चल रही हो या फिर डायरेक्ट जेल ही जाना है, तुम्हें और जो लोग तुम्हें वहां पर परमिशन के लिए आने से रोकेंगे उन्हें भी जेल की हवा खाने को मिलेगी। मैनेजर ने जल्दी से मीरा को आगे की तरफ ठेलते हुए कहा, अरे नहीं नहीं सर, कोई भी नहीं रोक रहा है, क्या कर रही हो मीरा, जाओ, यहाँ पर जो भी काम है वो सब हो जाएगा तुम्हारे बिना भी, लेकिन अभी ये ज्यादा जरूरी है।